सुप्रभात छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं, आशा है आप घर में रह करके लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना सबका ध्यान रख रहे होंगे, समाज का ध्यान रख रहे होंगे। चलिए, कल मैंने आपको अनुवाद शिक्षण की प्रणालियाँ बताई थी। विभिन्न स्तरों पर अनुवाद शिक्षण की प्रणालियों के बाद हम देखते हैं कि अनुवाद शिक्षण की जो नवीन प्रणालियाँ हैं, आप जानते हैं कि आज का युग बाल केंद्रित शिक्षा का युग है। हमारी जितनी भी पुरानी मान्यताएं हैं, धारणाएं, सब में एक महान परिवर्तन आ चुका है। तो भाषा शिक्षण की प्रणाली इससे कैसे अछूती रह सकती? हम नवीन शिक्षण प्रणालियों को जो कि आपके अनुवाद शिक्षण में अप्लाई करते हैं, उसके बारे में आज आपको बताते हैं। नवीन शिक्षण प्रणालियों में सबसे पहले आपकी आती है मॉन्टेसरी की भाषा शिक्षण पद्धति। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी के द्वारा चलाई गई यह शिक्षण पद्धति है। इनका कहना है कि बालक को पहले लिखना सिखाना चाहिए और उसके बाद पढ़ना, क्योंकि पढ़ने की अपेक्षा लिखना सरल होता है। पढ़ने के लिए बौद्धिक विकास की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन लिखने के लिए हम कर्मेंद्रियों को प्रशिक्षित करते हैं। जब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की साधना एक प्रकार से होती है, तो वह बौद्धिक व्यायाम होता है, और जब बालक इस व्यायाम को कर चुकता है, तब लिखना सीखने की वह पूरी तैयारी कर चुका होता है। इसलिए लिखना सीखना उसके लिए एकदम कोई नया कार्य नहीं होता। इसलिए बच्चे को पहले लिखना सिखाया जाए और पढ़ना बाद में। इन्होंने अपने संबंध में, इस बात के संबंध में दो तर्क दिए हैं। पहली बात तो ये कहा है कि यह जो कार्य है, पहले लिखना बाद में पढ़ना, तो यह जो कार्य है वह सरल से जटिल नामक शिक्षण सूत्र पे आधारित है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विधि न्याय संगत प्रतीत होती है। मतलब इसको माना जा सकता है कि साइको बेसिस यह विधि है तो यह सही है। लिखने के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं उनका ध्यान रखते हुए मॉन्टेसरी पद्धति ने इसके लिए कुछ न कुछ अभ्यास रखे हैं। जब तक हाथ की मांसपेशियों को सही तरीके से न साधा जाए, तब तक लिखने के लिए कहना ये इनके दृष्टि में भारी भूल है। तो इस पद्धति में इन्होंने तीन मुख्य बातों पर बल दिया है। पहला, अक्षरों का आकार होना। अक्षरों का आकार जानने के लिए बच्चे को लकड़ी या रेगमाल, सैंड पेपर जिसको कहते हैं, के अक्षरों पर अंगुली फेरने को कहा जाता है। अक्षरों की आकृतियों में स्याही या खड़िया भरने को कहा जाता है। उसे सही ढंग से कलम पकड़ना सिखाया जाता है और इसके पश्चात उसमें सीधी, गोल, तिरछी इत्यादि रेखाएं खिंचवाई जाती हैं। ये जो रेखाएं खींचता है बच्चा, उसके लिए बड़ा आनंददायक मनोरंजक खेल हो जाता है और उसे लेश मात्र भी नीरस प्रतीत नहीं होता। तो हम ये मान सकते हैं कि मॉन्टेसरी की यह पद्धति मनोवैज्ञानिक पद्धति है और रुचिकर पद्धति है। बच्चे के आवश्यकताओं के अनुसार सीखने की पद्धति है। मॉन्टेसरी ने जो पद्धति बनाई है, इसे इन्होंने लिखने का विस्फोट, आउटबर्स्ट ऑफ राइटिंग कहा है। तो इन सब अभ्यासों को पूरा करने में बालक जो है सफलता पूर्वक लिखना सीख जाता है। और वास्तव में ये जो पद्धति है, यह पद्धति अत्यंत वैज्ञानिक भी है और रोचक भी है। लिखने से जो हाथ की हरकतें हैं वह अवधान की ओर चली जाती हैं, और वास्तव में यह लेखन के सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव होता है। यदि इस पद्धति से हम बालकों को लिखना सिखाते हैं, तो बच्चे 1.5 महीने के अंदर ही लिखना सीख जाते हैं। लिखना सीखने के बाद मॉन्टेसरी के अनुसार बालकों को पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। इनका कहना है कि इसके पश्चात कुछ 15 दिन में बच्चा पढ़ना सीख जाता है। जो वाचन की क्रिया है, इस वाचन की क्रिया को आरंभ करके शब्द और अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड और अन्य सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। कार्ड पे आदेश लिखे जाते हैं और बालक उन आदेशों का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार वो खेल खेल में ही पढ़ना सीख जाते हैं। इसके लिए चित्रों का प्रयोग भी किया जाता है, जो शिक्षा के उपकरण हैं। उन शिक्षा के उपकरणों के माध्यम से लकड़ी के अक्षर भी होते हैं जिनसे बालक लिखना और पढ़ना सीख जाता है। इन अक्षरों पर उंगली फेरते फेरते बालक की उंगलियां सध जाती हैं और वह लिखना सीखने लगता है। अक्षर लिखते समय शिक्षिका साथ साथ अक्षर का उच्चारण करती चलती है और इस प्रकार अक्षर की ध्वनि से वह परिचित होता चलता है और अंकित चिन्हों का अर्थ निकालते चलता है। बिना समझे अगर अक्षर लिखवाया जाएगा बच्चों को तो वो बेवकूफ़ी है, वो मूर्खता होगी। तो बिना समझे अक्षर लिखवाया जाना ये गलत है, इसलिए मॉन्टेसरी की सम्मति में लिखना पहले और पढ़ना बाद में बताना अत्यंत आवश्यक है। पूर्व में भी मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी कई बार ये बात बताई है कि जो इनका शिक्षोपकरण है वह निश्चय ही अच्छा तो है, लेकिन ये हम अप्लाई इसलिए नहीं कर पाते, भारत के कुछ ही स्कूलों में इसको अप्लाई किया गया है। क्यों? क्योंकि यह व्यय साध्य है, खर्चीला है और हमारा देश इतना अमीर नहीं है कि वहाँ इस चीज़ों को लेकर के हम कार्य कर सकें। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी पद्धति आपकी आती है बालोद्यान पद्धति, बालोद्यान या किंडरगार्टन पद्धति। इस किंडरगार्टन पद्धति में आप जानते हैं कि जर्मन के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक फ्रोबेल जिनका पूरा नाम है, इन्होंने इसको अप्लाई किया है, इसका प्रतिपादन किया है। तो जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं इन प्रारंभिक कक्षाओं में फ्रोबेल का खेल द्वारा शिक्षा करना अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। समवेत स्वर में गाए जाने वाले गीत जैसे आप क्लास में अपने गवा सकते हैं, आओ हम सब झूला झूलें, पेंग बढ़ाकर नभ को छूलें, है बहार सावन की आई, देखो श्याम घटा नभ छाई। तो बच्चे एक साथ इसको गाते हैं, सावन के महीने का माह का अनुभव करते हैं और आनंद महसूस करते हैं और सामूहिक स्वर में कार्य करने के कारण उनमें सहयोग सहानुभूति इत्यादि की भावना का विकास होता है। तो ये जो पद्धति है यह आनंददायक होने के साथ साथ शिक्षाप्रद पद्धति भी मानी जाती है। पार्कर महोदय के अनुसार किंडरगार्टन पद्धति जो है 19वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण सुधार है। इसमें मातृ खेल और शिशु गीत जैसा मैंने आपको बताया, और मातृ खेल और शिशु गीत ज्ञानेंद्रियों के विकास में अत्यंत सहायक होते हैं। 4 से 8 तक के बालक को पढ़ाने के लिए इस पद्धति का हम उपयोग करते हैं। खेल खेल में भाषा का ज्ञान बच्चों को मिल जाता है और इन खेलों के द्वारा लिखने पढ़ने और रचना करने की शक्ति बढ़ती जाती है। इसके साथ साथ हम भारतवर्ष में भी देखते हैं कि पंडित देवी दत्त जी ने एक किंडरगार्टन बॉक्स बनाया था जिसकी सहायता से बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। इसमें बच्चों को आनंद भी मिलता है, वो सक्रिय भी रहते हैं, रुचि भी लेते हैं और इसमें हम अक्षरों के आकार को याद करने के लिए छड़ियों का प्रयोग करते हैं। बच्चों आप लोगों ने भी बचपन में एक स्लेट से पे लिखा होगा, जिस स्लेट में आधे पे तो स्लेट रहती थी लिखने के लिए और आधे में उसमें कुछ मोती या इस तरह की चीजें लगी रहती थी। तो इसमें हिंदी इंग्लिश गणित भूगोल विज्ञान सब कुछ मदर पढ़ाती थी और उसमें जो मोती लगे रहते थे एक से दस तक मोती की छड़ियाँ रहती थी। पहली छड़ी में एक मोती, दूसरी छड़ी में दूसरा, तीसरी में तीसरा करके 7, 8, 9, 10 तक लगी रहती थी। तो 1 से 10 तक की गिनती का घटाना जोड़ भाग गुणा बड़ी आसानी से हम कर सकते थे। तो ये सब इसी पे बेस हैं। तो जो अक्षर ज्ञान करने के लिए हम इस पद्धति में एक कविता बच्चों को सिखा देते हैं और याद कराने के बाद प्रत्येक पंक्ति का आरंभ वर्णमाला के अक्षर से होता है, जैसे अमरूद मिलकर खाओ, खा खरगोश को दूर भगाओ, इस तरह से कविताएं। तो इनकी सहायता से बच्चे अक्षर ज्ञान प्राप्त करते थे। और पढ़ना सिखाने के लिए हम चित्र की सहायता से कहानी सुनाते हैं, फिर कहानी में जो शब्द आए हैं उन शब्दों का ज्ञान कराते हैं। यह पद्धति जो है कहानी और गीतों के लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी और गीत भाषा शिक्षण इत्यादि में सहायक होती है, किंतु जो मॉन्टेसरी पद्धति बताई गई है तो मॉन्टेसरी की भांति लिखना और पढ़ना सिखाने के लिए फ्रोबेल की जो किंडरगार्टन पद्धति है इनके पास कोई विशेष मौलिक सुझाव नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि जो आपकी अनुवाद शिक्षण पद्धति है, और इस अनुवाद शिक्षण पद्धति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको बताना थोड़ा सा ज़रूरी था, जैसे कि आप खेल द्वारा पद्धति अनुवाद की जो अप्लाई करते हैं, इस खेल द्वारा अप्लाई की गई पद्धति में हम भाषा शिक्षण में कहाँ उपयोगी महसूस करते हैं। जैसे कि कोई कार्य बच्चा अगर करता है, अगर उसे रुचिकर प्रतीत नहीं हुई, आनंद नहीं मिला, तो उस कार्य को खेल की भावना से अगर जोड़ दिया जाता है तो वो मनोवैज्ञानिक हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। और इसी तरीके से खेल खेल में बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है जो कि भाषा शिक्षण में सहायक होता है। नेक्स्ट अब हम आपको बताते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए भाषा संबंधी खेल क्या होंगे। जैसे सबसे पहले हम आते हैं, बालकों के समक्ष एक बड़ा चित्र लटका दिया जाता है और कोई एक अक्षर बता दिया जाता है। इस अक्षर से प्रारंभ होने वाली वस्तुओं के नाम चित्र में से देखकर बच्चे लिखते हैं और इससे खेल खेल में उनका शब्द ज्ञान बढ़ता जाता है। मैं क्लास में आपको बताऊंगी इस चीज़ को। दूसरी चीज़ कि स्वर और व्यंजन लकड़ी के टुकड़ों पर अलग अलग लिखे रहते हैं। शिक्षक जो है, टीचर जो है, वो इन्हें जानवरों की तस्वीर दिखाता जाता है और उनमें इन लकड़ी के टुकड़ों पर लिखे अक्षरों से जानवरों का नाम बताने को कहता है। ये नंबर तीन, शुद्ध उच्चारण के लिए ठीक ठीक उत्तर देने की आदत डालने के लिए पत्ते दिखाना नामक खेल बालक खेल सकते हैं। कि किसी चीज़ के पत्ते दिखाओ, जैसे मान लीजिए कि कई चीज़ों में हमने अशुद्ध लिखा है और जिसमें शुद्ध लिखा है उसको अलग कलर से लिख करके ताक के पत्ते की तरह बच्चों के सामने हमने रख छोड़ा है मेज पे, तो बच्चे उसमें से शुद्ध को पत्ते को निकाल करके उस चीज़ को खोज लेते हैं। कक्षा को दो भागों में हम इसमें बांट देते हैं। पत्ते पर शब्द या वाक्य लिखे जा सकते हैं। विरोधी पार्टी वाले छात्र को 2 सेकंड के अंदर उसे पढ़ के प्रूव करना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण अथवा शुद्ध उच्चारण देने पर उसे विरोधी पार्टी के छात्रों के साथ ही शामिल होना पड़ता है, मतलब उसको अपना ग्रुप छोड़ देना पड़ता है। खेल की समाप्ति पर जिस और अधिक सदस्य रह जाए उसे विजयी दल समझा जाता है। इस तरीके से प्रारंभिक कक्षाओं में हमने आपको भाषा संबंधी कुछ खेल के बारे में बताया। माध्यमिक कक्षाओं में आते हैं कि माध्यमिक कक्षाओं में यदि हम भाषा संबंधी खेल खेलते हैं तो उसमें पहली बात आती है कहानी बनाना, कि आप किसी को क्लू दे दीजिए, कुछ चित्र कक्षा में टांग दीजिए और उस पर बच्चों को कहानी बनाने को कहा जाए। जैसे एक कौवा प्यासा था, प्यासे कौवे का चित्र, घड़े में थोड़ा पानी था, घड़े में थोड़े पानी का चित्र, कौवा लाया कंकड़, घड़े में छोड़ा कंकड़, कौवा कहीं से कंकड़ उठा के ले आया और कंकड़ को घड़े में डालते हुए ऊपर आया पानी, कौवा पी गया पानी, हो गई खत्म कहानी। तो इस तरीके से कहानी के माध्यम से हम खेल के कार्य को करते हैं और कल्पना के आधार पर जो चित्र हम प्रस्तुत करते हैं उनके माध्यम से बच्चे उसे पूरा करते हैं। दूसरा नंबर आपका आता है पहेलियाँ। कक्षा को 2 समुदाय में हम बांट देते हैं। छात्र बिना उस वस्तु का नाम लिए वर्णन करता चलता है। गद्य अथवा कविता में छात्र उसके नाम का अनुमान करते हैं और इस अभ्यास को कक्षानुसार सरल और कठिन बनाया जा सकता है। तीसरी बात आती है तार लिखना। कोई एक शब्द ले लिया, जैसे मान लीजिए वाराणसी, अब तार की भाषा ऐसी लिखी जाए जिसका प्रारंभ शब्द के प्रथम अक्षर से हो, जैसे वरुणा नदी के तट पर बसा हुआ, वरुणा नदी जिसके अंदर है, 80 घाट जिसके अंदर है, लंका जहाँ का मुहल्ला है। और इसी तरीके से हम शिव जी की नगरी कह सकते हैं, प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र कह सकते हैं, शिक्षा का केंद्र कह सकते हैं, तो बच्चे इसको बुझने का की कोशिश करते हैं, तार लिखते हैं और तार लिख करके उसको समझ जाते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को चित्रमय पत्र दिया जाता है। इस पत्र में कुछ शब्दों के स्थान पर चित्र लगे होते हैं और शिक्षक शिक्षार्थियों को आदेश देता है कि वह चित्र देखकर पत्र अपनी भाषा में लिखें। यह जो खेल विधि है वह अत्यंत रोचक है। प्रत्येक अवस्था का व्यक्ति खेल में रुचि रखता है। आपको पता ही है कि खेल द्वारा किए गए अध्यापन से अरुचि या अनुशासन भंग की समस्या नहीं होती है और बच्चे इसको सरलता से सीख जाते हैं। अगली चलिए चलते हैं कि अगर डाल्टन पद्धति के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाए, भाषा शिक्षण, तो इसको कैसे बताया जाएगा? डाल्टन पद्धति क्या है? इस पद्धति के प्रतिपादक जो है अमेरिका के डाल्टन नगर की निवासिनी कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट हैं जिन्होंने इस पद्धति को चलाया। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस पद्धति की है कि इसमें व्यक्तिगत कार्य को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। साधारण कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है। समय सारणी के बंधन से विद्यार्थी मुक्त होता है और स्वतंत्रता पूर्वक अपना निर्दिष्ट कार्य समाप्त करता है। कक्षा अध्यापक के स्थान पर अलग अलग प्रयोगशालाओं के विषय अध्यापक होते हैं और इस पद्धति में बालक को स्वाध्याय की प्रेरणा विषयाध्यापक ही प्रदान करता है। प्रारंभिक कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं उनको भाषा ज्ञान इस पद्धति के द्वारा नहीं कराया जाता है, बल्कि जब बालक भाषा का ज्ञान और पढ़ना लिखना सीख चुका होता है तब साहित्य का विस्तृत अध्ययन इस विधि के द्वारा सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका अनुवाद शिक्षण। आपकी अगली क्लास में मैं इसके आगे के पाठ को कंटिन्यू रखूंगी। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें आप।